एक क्लास चल रहा था 28 जुलाई 1968।
ओम शांति। द नाइट क्लास ऑफ द 28 जुलाई 1968 वॉज गोइंग ऑन।
पहले पेज के मध्यांश में बात चल रही थी, राम राज्य में होता है सुख और रावण राज्य में होता है दुख।
The topic being discussed in the end of the middle part of the first page was, there is happiness in the kingdom of Ram and there is sorrow in the kingdom of Ravan.
Ram अर्थात रमण कराने वाला।
Ram means the one who delights others.
और रावण अर्थात रुलाने वाला।
एंड रावण मीन्स द वन हु मेक्स अदर्स क्राई।
दुख में रोते हैं,
पीपल क्राइंग सॉरो,
और सुख में खेलते हैं,
एंड प्ले इन हैप्पीनेस।
तुम जानते हो,
यू नो,
कि बरोबर रावण राज्य में हम बंदर मिसल थे।
We were definitely like monkeys in the kingdom of Ravan.
उन बंदर मिसल को ही बाप मंदिर लायक बनाकर रावण राज्य पर जीत पहनाते हैं।
The father makes those very children who are like monkeys worthy of being worshipped in a temple and enables them to gain victory over the kingdom of Ravan.
इस समय सारी दुनिया पर रावण राज्य है।
राइट नाउ द एंटायर वर्ल्ड इज अंडर द रूल ऑफ रावण।
यूं कहो कि सारी दुनिया एक बेट है।
इट कैन बी सेड दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एन आइलैंड।
समुद्र पर सारी दुनिया खड़ी है।
द एंटायर वर्ल्ड इज लाइंग इन द ओशन।
और सारी दुनिया में रावण राज्य है तो मनुष्य बहुत हैं।
There is the kingdom of Ravan in the entire world, so there are a lot of people in it.
राम राज्य होगा तो थोड़े मनुष्य होंगे।
There will be a few people when there is the kingdom of Ram.
तो अच्छी रीति समझना है।
So you should understand it nicely.
सुखदाई थोड़े होते हैं।
There are a few people who give happiness.
और दुखदाई बहुत होते हैं।
And there are a lot of people who give sorrow.
सुदर्शन चक्रधारी भी तुम ब्राह्मण ही बनते हो।
Only you Brahmins become सुदर्शन चक्रधारी as well.
क्योंकि तुम ब्राह्मणों ने 84 का पूरा चक्कर लगाया है।
Because you Brahmins have passed through the complete cycle of the 84 births.
तुम्हारे में 84 के चक्र का ज्ञान है।
You have the knowledge of the cycle of the 84 births.
परंतु ये विष्णु के चक्र आदि के अलंकार तुमको नहीं दे सकते।
But you can't be adorned with this discus and other ornaments of Vishnu.
क्योंकि कभी अलंकार धारण करते हो कभी छूट जाते हैं।
It is because you adorn yourselves with these ornaments sometimes and you forget it sometimes.
स्थाई अलंकार तुम्हारे रहते नहीं।
You don't put your ornaments on all the time.
इसलिए विष्णु है फाइनल। तुम्हारा संपूर्ण फरिश्ता रूप।
दिस इज वाई विष्णु इज द फाइनल फॉर्म, योर कम्प्लीट एंजेलिक फॉर्म।
इसलिए उनको अलंकार दे दिए।
दिस इज वाई ही मीनिंग विष्णु हैज बीन शोन विथ ऑर्नामेंट्स।
बाकी अंतर क्या है, विष्णु में और तुम्हारे में क्या अंतर है?
As for the rest, what is the difference between Vishnu and you?
तुम्हारे में ज्ञान है।
You have the knowledge.
विष्णु में ये ज्ञान नहीं होगा.
एंड विष्णु won't have this नॉलेज.
अलंकार तो होंगे परंतु ये ईश्वरीय ज्ञान नहीं होगा.
He will be adorned with ornaments, but he won't have this spiritual knowledge.
ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों में ही है.
Only you Brahmins have this knowledge.
विष्णु जैसे संपन्नता स्वरूप देवताओं में भी नहीं है.
Even the deities with a complete form like that of Vishnu don't have it.
Na devataon mein gyan hai na shudro mein gyan hai.
Neither the deities nor the shudras have this knowledge.
Tum to shudra se brahman ban gaye ho.
You have become brahmins from shudras.
Ekdam edi se choti ke brahman bane ho.
You have absolutely become a top-notch Brahmin from being at the level of the heel.
Eri hoti hai sabse neech.
The heel is the lowest.
Aur choti hoti hai sabse unch.
And the top knot is the highest.
Isliye tum Brahman kul ko devtaon se bhi unch kaha gaya hai.
This is why your Brahmin clan is considered higher than even the deities.
Aur तुम ब्राह्मणों से भी ऊंचे है शिव बाबा.
एंड शिव बाबा इज हायर देन इवन योर ब्राह्मण्स.
इसलिए ब्राह्मण चोटी में गांठ लगाते हैं तो शिव का चित्र बनाए देते हैं. जो निराकार लिंग की यादगार है.
दिस इज वाई व्हेन द ब्राह्मण्स नॉट देयर हेयर दे मेक द पिक्चर ऑफ शिव which is the yadgar of the incorporeal ling.
So brahmano ke upar hai shiv baba.
So shiv baba is above the brahmins.
Gaate bhi hai bahut gayi thodi rahi thodi ki bhi thodi rahi.
They even sing a lot of time has elapsed, very little time is left. A very little part of even that little time is left.
अभी ये पुरानी दुनिया बाकी थोड़ा समय है.
Now, little time of this old world is left.
तो अभी नई दुनिया में जाने के लिए इस याद की यात्रा पर गौर करो.
So now, pay attention to this journey of remembrance to go to the new world.
साथ साथ दैवी गुण भी चाहिए.
Divine virtues are also essential along with it.
बच्चे समझते हैं.
The children understand.
कि हम कल्प कल्प अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं.
We make Bharat heaven through our body, mind and wealth every cycle.
भारत ही स्वर्ग बनता है.
Bharat alone becomes heaven.
क्योंकि नाम ही है भारत. भारत रोशनी.
इट इज बिकॉज हिज वेरी नेम इज भारत. भा मीन्स लाइट.
ये ज्ञान सागर के ज्ञान की रोशनी है.
इट इज द लाइट ऑफ द नॉलेज ऑफ द ओशन ऑफ नॉलेज.
रथ माने लगा हुआ.
एंड रथ मीन्स टू बी एंगेज.
जो सदैव जीवन भर ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ है.
द वन हु रिमेन्स एंगेज्ड इन द लाइट ऑफ नॉलेज थ्रू आउट हिज लाइफ.
वो भारत ही स्वर्ग बनता है.
दैट भारत हिमसेल्फ बिकम्स हेवन.
रावण राज्य में जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म बन जाते हैं.
Whatever actions are performed in the kingdom of Ravan become vikarm, wrong actions.
Ram Rajya mein tum jo bhi karma karte ho, wo akarm ho jate hain.
And whatever actions you perform in the kingdom of Ram become akarm, neutral actions.
Kyunki karma देह से देहभान से किए जाते हैं.
इट इज बिकॉज एक्शंस आर परफॉर्म्ड थ्रू द बॉडी, द कॉन्शियसनेस ऑफ द बॉडी.
देवताएं तो आत्म की स्थिति में रहते हैं.
डीटी स्टे इन द सोल कॉन्शियस स्टेज.
इसलिए उनके कर्म अकर्म हो जाते हैं.
सो देयर एक्शंस बिकम अकर्म.
कर्मों का कोई लेप छेप नहीं बनता.
दे डोंट गेट अफेक्टेड बाय देयर एक्शंस एट ऑल.
तो ये बात भी बाप ही समझाते हैं कि राम राज्य में विकर्म क्यों नहीं बनते.
द फादर हिमसेल्फ एक्सप्लेन्स दिस एज वेल एज टू व्हाई रॉन्ग एक्शंस आरंट कमिटेड इन द किंगडम ऑफ राम.
विपरीत कर्म इसलिए नहीं बनते हैं कि पांच तत्वों का जो शरीर है वो आत्मा का स्व नहीं है.
You don't commit wrong actions because the body that is made up of five elements isn't something that belongs to the soul.
Par hai prakriti aur prakriti ke panch tatva.
It is not its own. Nature and the five elements of nature are not its own belonging.
Agar inki smriti mein rehte hain तो जैसे देहभान में रहते हैं.
इफ यू रिमेम्बर देम इट इज एज इफ यू आर बॉडी कॉन्शियस.
देहभान में रहने से विकर्म बन जाते हैं.
यू कमिट रॉन्ग एक्शंस बिकॉज ऑफ स्टेइंग बॉडी कॉन्शियस.
प्रकृति को स्त्री कहा जाता है.
द नेचर इज कॉल्ड फीमेल.
पुरुष को आत्मा कहा जाता है.
एंड द सोल इज सेड टू बी मेल.
तो आत्म की स्थिति में रहना बाप सिखाते हैं.
सो द फादर टीचेस यू टू स्टे सोल कॉन्शियस.
ये ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है.
दिस नॉलेज इज इन गिवन इन एनी ऑफ द स्क्रिप्चर्स.
क्या आत्म की स्थिति में रहो, आत्मा के बाप को याद करो.
यू शुड स्टे सोल कॉन्शियस and remember the father of the souls.
आत्माओं का बाप एक ही है जो कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाने वाला है.
The father of the souls is the only one who explains the dynamics of karma, akarma and vikarma.
बाकी तो सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के कारण ड्रामा के चक्र का नॉलेज नहीं रख सकती.
ऑल द अदर सोल्स कांट हैव द नॉलेज ऑफ द साइकिल ऑफ ड्रामा एज दे कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ.
आत्माओं में सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान हो सकता है.
द सोल्स कैन ओनली हैव द नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स.
पूरे शशि चक्र का ज्ञान नहीं हो सकता.
दे कांट हैव द नॉलेज ऑफ द होल वर्ल्ड साइकिल.
बच्चे जानते हो.
यू चिल्ड्रन नो.
बाप से हम सुख शांति का वर्षा ले रहे हैं.
वी आर रिसीविंग द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस फ्रॉम द फादर.
आत्म की स्थिति से ही सुख और शांति मिलती है.
वी गेन हैप्पीनेस एंड पीस ओनली थ्रू द सोल कॉन्शियस स्टेज.
अभी भी प्रैक्टिस करके देखो. जिन दिनों में आत्म की स्थिति ज्यादा रहती है उन दोनों सुख और शांति का अनुभव होता है.
यू कैन प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्व दैट इवन नाउ दैट द डेज व्हेन यू स्टे इन अ सोल कॉन्शियस स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम यू एक्सपीरियंस मोर हैप्पीनेस एंड पीस दोज डेज.
तो तुम्हारी यात्रा है चढ़ती कला की.
सो योर जर्नी इज टुवर्ड्स राइजिंग सेलेस्टियल डिग्रीज.
भक्ति में यात्राएं करते हैं उतरती कला की.
In the path of bhakti, they go on the journey of falling celestial degrees.
Atma ki shakti chheen hoti jati hai.
The power of the soul keeps diminishing.
Bhakti marg mein wastage of time, money or energy.
There is wastage of time, money and energy in the path of bhakti.
और यहाँ तो तुम्हारा वेस्टेज होता ही नहीं।
Whereas here there is no wastage.
तुम ब्राह्मण हो प्रजापिता ब्रह्मा की बच्ची।
You Brahmins are the children of Prajapita Brahma.
सिर्फ ब्रह्मा के बच्चे नहीं।
You aren't the children of just Brahma.
प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे।
You are the children of Prajapita Brahma.
मात पिता की प्रवृत्ति मार्ग की संतान हो।
You are the children of the household part of the mother and the father.
प्रवृत्ति मार्ग का धर्म एक ही सनातन धर्म है, देवी देवता धर्म।
Only the ancient religion, the deity religion, is the religion of the household part.
सूर्यवंशी चंद्रवंशी।
The सूर्यवंशी and the चंद्रवंशी।
बाकी और जितने भी मानवीय धर्म हैं, वो सब निवृत्ति मार्ग के हैं।
All the other human religions are of the part of renunciation.
तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो, शिव बाबा के पुत्र हो।
You are the children of Prajapita Brahma and the grandchildren of Shiv Baba.
पहले कौन?
Who comes first?
पहले शिव बाबा या प्रजापिता?
Is Shiv Baba or Prajapita first?
पहले शिव बाबा।
First is Shiv Baba.
यज्ञ के आदि में कौन प्रत्यक्ष हुआ?
Who was revealed in the beginning of the yajna?
क्या कहेंगे?
What will be said?
शिव बाबा प्रत्यक्ष हुआ।
शिव बाबा was revealed.
बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है।
A grandfather is called Baba.
प्रजापिता का नाम तो मुरलियों में भी बाद में ऐड किया गया।
The name of Prajapita was added later on in the Murlis as well.
और मुरलियों को अर्थात वेदवाणी को समझने वाले तुम बच्चे हो।
And only you children understand the Murli, that is the Vedvani.
जो समझू सयाने नहीं है, उन्होंने तो अभी भी प्रजापिता को नहीं पहचाना।
The children who aren't wise and intelligent haven't recognized Prajapita even till now.
बाप कोई नहीं जानते तो प्रवृत्ति मार्ग के कैसे हुए?
When they don't know the father himself, how can they be those who follow the household path?
इसलिए सब इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं।
This is why all of them get converted to the Islam, the Buddhist religion and the Christian religion.
क्योंकि मनुष्य सृष्टि का जो एक ही बेहद का बाप है, जिसमें बेहद आत्माओं का बाप प्रवेश करते हैं, उस बेहद के बाप को नहीं पहचान पाते।
It is because they aren't able to recognize the one and only unlimited father of the human world in whom the unlimited father of the souls enters.
तो कहेंगे तुम हो शिव बाबा के पोत्रे।
So it will be said you are the grandchildren of Shiv Baba.
भक्ति मार्ग में परंपरा चलती है।
This tradition is followed in the path of bhakti.
बच्चों को वर्षा बाप से मिले न मिले, हार कति दे देवे, परंतु डाडे का वर्षा तो मिलता ही मिलता है।
That whether or not the child gets the inheritance from his father, even if his father gives him parkati, he definitely receives the inheritance of his grandfather.
Foundation कहाँ पड़ता है?
Where is its foundation laid?
यहाँ यज्ञ में foundation पड़ता है।
Its foundation is laid here in the yajna.
यज्ञ के आदि में।
In the beginning of the yajna.
जो बच्चे कारण है अकारण है यज्ञ छोड़ करके चले गए।
The children who had left the yajna due to some or the other reason.
अभी दोबारा जन्म लेकर के फिर यज्ञ में आए हैं।
They have arrived here again after having another birth.
उन्हें बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भले कोई स्थान न मिले, परंतु जो डाढ़े का वर्षा है, ज्ञान का वर्षा, वो हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है।
Even though they don't get any place in the world of the basic Brahmins, but the inheritance of the grandfather, that is, the inheritance of knowledge, is the birthright of every child.
वो ब्राह्मण तो भिक्षा मांगते हैं।
Those Brahmins ask for alms.
कौन से ब्राह्मण?
Which Brahmins?
भक्ति मार्ग वाले।
The Brahmins of the path of bhakti.
तुम ब्राह्मणों को तो कहते हैं मांगने से मरना वाला।
On the contrary, he tells you Brahmins, it is better to die than to ask.
तुम्हारे अंदर जन्म जन्मांतर के राजाई के संस्कार हैं, राज घराने के संस्कार हैं।
You have the संस्कार्स of kingship of many births. You have the संस्कार्स of the royal family.
राजाई के संस्कार वाले देने वाले होते हैं, कोई के सामने हाथ पसारने वाले नहीं होते हैं।
Those with the संस्कार्स of kingship are the ones who give. They aren't those who stretch their hands out in front of others.
तो तुमको तो कहते हैं मांगने से मरना भला।
So he tells you, it is better to die than to ask.
फिर बताते हैं कि सहज मिले से दूध सम, मांग लिया सो पानी।
Then he says, whatever you get with ease is like milk. If you have asked for it, it is like water.
नई दुनिया की स्थापना के कार्य में भी जिनसे सहज सहज सहयोग मिलता हो बिना मांगे, वो सहज सहज ले लेना चाहिए।
Even in the task of the establishment of a new world, you should take help from those who help readily without asking for it.
अगर इशारे से भी मांगना पड़े तो वो ईश्वरीय सेवा में नई दुनिया की स्थापना के कार्य में काम में नहीं आवेगा।
If you have to ask even through hints, it won't be useful in the service of God in the establishment of the new world.
जैसे पानी को बिलोने से कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता, कोई सार नहीं निकलता।
Just as nothing emerges, no essence emerges by churning water.
ऐसे ही इस ज्ञान यज्ञ में मांगी हुई चीज स्वाहा करने से नई दुनिया के मतलब की चीज नहीं रहेगी।
In the same way, if you sacrifice something which has been asked for in the yajna, it will be of no use in creating the new world.
फिर कहते हैं खींच लिया तो खून बराबर।
Then it is said, if you acquire something forcefully, it is like blood.
अगर नई दुनिया की स्थापना के नाम पर कोई से खींच करके ले लिया, धोखा देके ले लिया, झूठ बोल करके ले लिया, चोरी डकैती करके ले लिया और ईश्वरीय सेवा में लगाया।
In the name of the establishment of the new world, if you acquire something forcefully from someone, by deceiving or lying to someone, or by stealth, and offer it in the service of God,
तो बाप कहते हैं कि वो क्षीर सागर नहीं बनाएगा, दूध की दुनिया नहीं बनावेगा और ही खून खराबे की दुनिया बन जाएगी।
The father says, that won't make the ocean of milk, क्षीर सागर, the world of milk. It will promote the world of bloodshed all the more.
अभी भाग्य का बनाना और बिगाड़ना अपने हाथ की बात है.
Now, to make up your fortune or to ruin it is up to you.
खून खराबे की दुनिया है द्वापर कलयुग.
The copper and the iron age are the ages of bloodshed.
सतयुग और त्रेता है क्षीर सागर की दुनिया.
The golden and the silver age are the ages of the ocean of milk.
जहाँ विष्णु का राज्य है.
Where the kingdom of Vishnu prevails.
स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के एक मत होकर के कार्य करते हैं.
Male and female both work unitedly.
बाप दादा की श्रीमत पर न चले.
If you don't follow the श्रीमत of बाप दादा,
तो ये दूध नहीं पानी हो जाता है.
It becomes water, not milk.
28 जुलाई 68 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज.
Second page of the night class dated 28 July 1968.
तो पक्का समझो कि मांगने वाले पर दोष लग जाता है.
So understand this firmly. The one who asks for alms is at fault.
दोष पूर्ण होने के कारण रिजल्ट नहीं निकलता.
They don't obtain any result because of being at fault.
कोई कहते हैं कि हम दुनिया वालों से थोड़े ही मांगते हैं.
Some say we don't ask from the worldly people at all.
हम तो अपने बाप से मांगते हैं.
We are asking from our father.
अरे बाप मांगने से देने वाला है या बिना मांगे ही देने वाला है.
अरे does the father give you something after you ask for it or does he give you everything without asking?
63 जन्म बाप के सामने मांगते रहे.
You have been begging in front of the father in the 63 births.
क्या कुछ मिला?
Did you get anything?
ब्राह्म अपने अनुसार जब देना होता है तो स्वतः ही देते हैं.
He gives you everything on his own when it has to be given to you according to the drama plan.
ज्ञान धन भी स्वतः ही देते हैं.
He gives you even the wealth of knowledge on his own.
वेद के बाप से बच्चों को मांगने की दरकार नहीं.
The children don't need to ask anything from the unlimited father.
भक्ति मार्ग में दान करते थे. मेरे अर्थ कृष्णार्पणम.
You used to give donation for my sake in the path of bhakti, saying Krishna arpanam, meaning we dedicate this to Krishna.
Krishna को भगवान समझते थे ना?
You used to consider Krishna to be God, didn't you?
तो अल्पकाल का एक जन्म के लिए सुख मिल जाता था.
So you used to receive temporary happiness for one birth.
वो तो इनडायरेक्ट की बात है.
That was when you received it indirectly.
अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हो रही है.
The shooting is going on in the world of Brahmins now as well.
देहधारियों के थ्रू जो लेन देन होता है उसे डायरेक्ट नहीं कहेंगे. क्या कहेंगे?
The dealings you have through bodily beings won't be called direct dealing. What will it be called?
Indirect.
It is indirect.
अभी तो मैं डायरेक्ट आया हुआ हूँ.
Right now, I have come directly.
भक्ति मार्ग में होता है इनडायरेक्ट. एक जन्म के लिए प्राप्ति होती है.
द अटेनमेंट मेड इन द पाथ ऑफ भक्ति इज इनडायरेक्ट व्हेन यू मेक द अटेनमेंट फॉर जस्ट वन बर्थ.
और जब मैं अभी डायरेक्ट आया हुआ हूँ तो 21 जन्म के लिए प्राप्ति कराता हूँ.
एंड नाउ व्हेन आई हैव कम हियर डायरेक्टली आई इनेबल यू टू मेक अटेनमेंट फॉर 21 बर्थ.
तो डायरेक्ट करने से तुम्हारा 21 जन्म का बन जाता है.
सो व्हेन यू हैव डायरेक्ट डीलिंग्स यू मेक योर फॉर्च्यून फॉर द 21 बर्थ.
और 21 जन्म का जो बनता है उसी हिसाब से 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है.
एंड डिपेंडिंग ऑन वट एवर फॉर्च्यून यू मेक फॉर द 21 बर्थ्स द अकाउंट्स ऑफ द 63 बर्थ्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड.
बाकी दान करना है, मदद करनी है, नहीं करनी है, वो तो तुम्हारे ऊपर है.
As for the rest, whether you want to donate, whether you want to help someone or not, that is up to you.
करो या न करो.
Do it or drop it.
जैसा करेंगे वैसा पावेंगे.
As you sow, so shall you reap.
नहीं करेंगे नहीं पावेंगे.
If you don't, you won't reap anything.
बाप बच्चों को कहते हैं कब मांगना नहीं है.
The father tells the children, you shouldn't beg at any cost.
नहीं तो अवज्ञा का दंड पड़ जाएगा.
Or else, you will be punished for disobedience.
क्यों?
Why?
क्यों दंड पड़ जाएगा?
Why will you be punished?
मांगने वाला सदगुरु की निंदा कराने वाला बन जाता है.
A child who begs in front of others brings defamation to the Sadguru.
सदगुरु बाप तो आकर के राजयोग सिखा करके राजा बनाने आए हैं.
The Sadguru father has definitely come to make you a king by teaching Rajyog.
मांगने वाला आधीन भिखमंगा बनाने के लिए नहीं आए हैं.
He hasn't come to make you the one who begs, a subordinate, a beggar.
और फिर कोई मांगने लगे.
And despite that, if someone starts begging,
तो ये तो बाप की निंदा कराई.
It is like defaming the father.
ऐसों के लिए फिर कहते हैं क्या?
Then it is said for such children. What?
क्या कहावत है?
What is the saying?
सदगुरु निंदक थोर न पावे. ऐसे मांगने वाले ब्राह्मण जो नई दुनिया फर्स्ट क्लास बननी है, बाप आकर के जो नई दुनिया का डायरेक्ट फाउंडेशन लगाते हैं, 16 कला संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, उस दुनिया में उनको ठौर नहीं मिल सकता.
सदगुरु निंदक ठौर न पावे. इट मीन्स सच ब्राह्मण्स हु बेग कांट फाइंड एन अकोमोडेशन इन द फर्स्ट क्लास न्यू वर्ल्ड दैट इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड. द वर्ल्ड ऑफ द डीटीज कंप्लीट विद 16 सेलेस्टियल डिग्रीज कंप्लीटली नॉन वायलेंट एंड मर्यादा पुरुषोत्तम whose foundation is laid directly by the father.
बाकी वो गुरु तो ऐसे ही कहते रहते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे. अपने को सदगुरु समझते हैं.
As for the rest, those gurus simply keep saying सदगुरु निंदक ठौर न पावे. They consider themselves to be सदगुरु.
अपना ही घर घाट ठौर छोड़ करके भागते हैं तो दूसरों को कौन सा ठौर ठिकाना देंगे.
दे रिनाउंस देयर ओन हाउस होल्ड देयर ओन प्लेस एंड रन अवे देन व्हाट अकोमोडेशन विल दे प्रोवाइड अदर्स.
ये तो बाप बेहद का सदगुरु बन करके आया हुआ है.
इट इज द फादर हिमसेल्फ हु हैज कम एज द अनलिमिटेड सदगुरु.
नंबर बार बच्चों को पद देते हैं.
एंड ही गिव्स द चिल्ड्रन अ पोजीशन नंबर वाइज.
तो क्यों भीख मांग करके सदगुरु की पद गंवाते हैं.
देन व्हाई डू यू डिस्ग्रेस द सदगुरु बाय बेगिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स.
इस दुनिया में ऊंचे ऊंचे पार्ट बजाने वाला शिव बाबा और फिर उसके बच्चे कहलाने वाले भीख मांगे. कितनी निंदा की बात हो गई.
द हाइस्ट ऑफ द हाई एक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड शिव बाबा एंड द वंस हु कॉल देमसेल्फ हिज चिल्ड्रन कीप बेगिंग. That is so disgraceful.
बच्चों को कभी नहीं मांगना चाहिए.
The children should never beg in front of others.
निंदा कराए करके तुम अपना मर्तबा नीच बनाते हो.
You demote yourself by defaming him.
जन्म जन्मांतर का मर्तबा कम हो जाता है.
You are demoted for many births.
इसलिए तब भी भीख नहीं मांगनी चाहिए.
सो यू शुड नेवर बेग इन फ्रंट ऑफ अदर्स.
बाप कायदे कानून तो सभी प्रकार के समझाए देते हैं.
द फादर टीचेस यू ऑल काइंड्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस.
फिर हरेक बच्चे को अपने अपने प्रकार की बुद्धि है.
Then each child has his own kind of intellect.
ये बुद्धि हजार नियामत है.
This intellect is a great gift.
कैसे?
How?
त्रेसठ जन्मों में जिन्होंने जैसे जैसे कर्म किए हैं, उन कर्मों के अनुसार अच्छी या बुरी प्रकार की बुद्धि मिल जाती है.
वट एवर काइंड ऑफ एक्शन ईच वन हैज परफॉर्म्ड इन द 63 बर्थ्स, दे रिसीव अ गुड और बैड इंटेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट.
उस बुद्धि के आधार पर ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं.
दे ग्रैस्प एंड असिमिलेट द नॉलेज ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू इट.
इसलिए बोला कि हर एक बच्चे की बुद्धि अपनी अपनी है.
दिस इज वाई इट हैज बीन सेड ईच चाइल्ड हैज हिज ओन काइंड ऑफ इंटेलेक्ट.
बताते हैं कि कोई हॉस्पिटल बनाते हैं, उनका फल दूसरे जन्म में मिल जाता है.
ही सेज इफ समवन बिल्ड्स अ हॉस्पिटल ही विल रिसीव इट्स फ्रूट इन द फॉलोइंग बर्थ.
ऐसे नहीं कि ग्लोबल हॉस्पिटल बनाई दिया, तो कोई ग्लोबल हॉस्पिटल बनाने वालों को 21 जन्म के लिए मिल जाएगा.
इट इज इन दैट दोज हु हैव बिल्ट द ग्लोबल हॉस्पिटल विल रिसीव इट्स फ्रूट फॉर द 21 बर्थ्स.
हाँ, एक जन्म के लिए फल मिलेगा.
यस दे विल रिसीव इट्स फ्रूट फॉर वन बर्थ.
हॉस्पिटल बनाने वाले भी बल ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, फिर भी ये ईश्वरीय धंधा तो नहीं है क्या?
Although the people who have built that hospital are Brahmins and are called the children of Brahma, still it isn't a service of God. What?
हॉस्पिटल आदि बनाना.
To build a hospital, etc.
तो अगले जन्म में उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, पहचान हो जाएगी.
So they will attain God in the following birth. They will recognize Him.
बाकी ऐसे नहीं कि 21 जन्म का मर्तबा मिल जाएगा.
As for the rest, it isn't that they will receive a position for the 21 births.
या यूं कहें कि हॉस्पिटल बनाने वाले अगले जन्म में बीमार नहीं पड़ेंगे.
Or else we can say that the people who make a hospital won't become ill in their following birth.
नहीं तो मनसा वाचा कर्म इंद्रियों से कितने बीमार हो पड़ते हैं.
Otherwise, there are many who become ill through their mind, words and karma indriya.
Dharmasala banavenge to makan achha mil jayega. Parantu ek janm ke liye.
If you build a rest house, you will get a good house, but just for one birth.
ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये शूटिंग होती है.
दिस शूटिंग गोज ऑन इन द वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मण्स एज वेल.
एक जन्म के लिए मेहलमानी आचार्यियां मिल जाएंगी.
यू विल गेट पैलेसेस एंड मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स फॉर वन बर्थ.
बाप फिर कहते हैं.
सो द फादर सेज
कि नई दुनिया में तुमको बाप से किस जन्म के लिए मिलना है.
यू विल रिसीव द इनहेरिटेंस फॉर 21 बर्थ्स इन द न्यू वर्ल्ड फ्रॉम द फादर.
अच्छा बच्चों को समझाते तो बहुत हैं.
अच्छा ही एक्सप्लेन्स अ लॉट टू द चिल्ड्रन.
समझा समझा करके बच्चों को 100% समझदार बनाते हैं.
He makes the children 100% sensible by explaining again and again.
फिर माया रावण 100% बेसमझ बनाई देती है.
Later, माया रावण makes them 100% senseless.
सभी कहते हैं करेक्टर्स खराब हैं, क्योंकि विकारी है ना.
Everyone says their character is bad because they are vicious, aren't they?
बाप आकर के तुम्हारे करेक्टर से राम राज्य में दैवी बनाई देते हैं.
The father comes and makes your character divine in the kingdom of Ram.
समझाते हैं.
He explains.
कि अगर इस ब्राह्मण जीवन में प्योरिटी नहीं आई.
If you don't assimilate purity in this Brahmin life,
तो peace और prosperity में भी कमी पड़ जाएगी.
You will lack peace and prosperity as well.
निर्विकारी दुनिया है, solvent दुनिया, सब प्रकार से भरपूर रहेंगे. विकारी दुनिया है insolvent.
The viceless world is the solvent world. Where you will be abundant with everything. The vicious world is insolvent.
तो सारा मदार पवित्रता पर है.
So everything is based on purity.
दुनिया के सारे काम purity से होते हैं.
All the tasks of the world are accomplished through purity.
अभी दुनिया में purity नहीं है तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है.
नाउ एज देयर इज नो प्यूरिटी इन द वर्ल्ड देयर इज नो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ईदर.
भारत से विदेशों की तुलना कर सकते हो.
यू कैन कंपेयर भारत विद द फॉरेन कंट्री.
कहाँ पीस और प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है.
Where do you find more peace and prosperity?
विदेशों में या भारत में.
In the foreign countries or in Bharat?
क्यों विदेशों में इतनी शांति और धन संपत्ति का जखीरा क्यों जमा हुआ पड़ा है.
Student, in the foreign countries, why is there abundant peace, prosperity and wealth in the foreign countries?
भले अल्पकाल का है.
दो इट इज टेम्पररी.
लेकिन है तो
दे डू हैव इट डोंट दे।
यहाँ भारत में तो झगड़ा अत्याचार भ्रष्टाचार सभी होते रहते हैं।
वेयर एज देयर आर डिस्प्यूट्स एट्रोसिटीज करप्शन एंड एवरीथिंग इन भारत।
विकारों के कारण भारत में द्वापर युग के शुरू से लेकर के झगड़े आदि पड़ते चले आ रहे हैं।
Disputes etc. have been going on in Bharat from the beginning of the Copper Age due to vices.
कितने अत्याचार होते हैं?
So many atrocities are committed.
और ये अंत तक चलते रहेंगे.
And this will continue till the end.
अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बदादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते।
अच्छा, रिमेम्बरेंस लव एंड गुड नाइट टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन फ्रॉम द स्पिरिचुअल फादर एंड दादा। नमस्ते टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन फ्रॉम द स्पिरिचुअल फादर।
एक दूसरा छोटा सा रात्रि क्लास है।
This is another short night class dated 29/7/1968.
इस षष्ठी चक्र में तीन मतें होती हैं।
There are three kinds of directions in this world drama wheel.
कौन कौन सी तीन मतें होती हैं? सारी मानवीय सृष्टि के चक्र में 84 के चक्र में तीन मतें खास कौन कौन?
There are three main directions in the entire cycle of the human drama, the cycle of the 84 births. What are they?
पहली है ईश्वरीय मत।
First, there are the directions of God.
फिर होती है दैवी मत।
Then there are the divine directions.
उसके बाद होती है आसुरी मत।
And later on there are the demonic directions.
एक है मानव मत।
Another one is the directions of the human beings.
मनुष्यों की मत से दुनिया नीचे उतरती चली जाती है।
The world deteriorates through the directions of human beings.
उसके बाद होती है ईश्वरीय मत।
After that comes the directions of God.
ईश्वर आकर के मनुष्य से देवता बनाते हैं।
God comes and transforms human beings to deities.
तो दैवीय मत कही जाती है।
So it is known as divine direction.
ईश्वर मनुष्य मत से चेंज करके ईश्वरीय मत से दैवी मत बनाते हैं।
God transforms the direction of human beings to the directions of God and makes it divine directions.
सतयुग त्रेता में है दैवी मत।
There are divine directions in the golden and the silver age.
बाप ने समझाया है।
The father has explained.
कि सत्ययुग को स्वर्ग कहा जाता है।
That the golden age is called heaven.
त्रेता को भी स्वर्ग कहेंगे लेकिन दो कलाएं कम हो जाती हैं।
The silver age will also be called heaven, but it lacks two celestial degrees.
इसलिए सेमी स्वर्ग कहेंगे।
So it will be called semi heaven.
संपूर्ण स्वर्ग नहीं कहेंगे क्योंकि संपूर्ण आत्मिक स्थिति वहाँ नहीं रहती.
It won't be called complete heaven because the deities don't remain in the complete soul conscious stage.
स्वयं स्थिति नहीं रहती.
The stage of the self there.
अभी भी.
Even now.
महाविनाश सामने खड़ा है.
The great destruction is standing ahead.
तुम बच्चे प्रैक्टिस करके जितना जितना स्वयं स्थिति में स्थित होते जाते हो. उतना उतना अपने को हल्केपन में सुख में महसूस करते रहेंगे.
The extent to which you children practice and continue to stabilize in the state of the self, you will feel light and happy to that extent.
बल दुनिया में विनाश बरपा होता रहे.
Though destruction takes place in the world.
परंतु अभी 16 कला संपूर्ण सुख तो नहीं कहेंगे.
But now it won't be said that you have happiness complete with 16 celestial degrees.
इसलिए कहते हैं कि अभी हम बच्चे उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं.
This is why it is said we children are ascending the ladder now.
धीरे धीरे स्वयं स्थिति की प्रैक्टिस के अनुसार हमारी आत्मा की कलाओं की बढ़ोतरी होती जाती है.
Gradually, according to the practice of the stage of the self, the celestial degrees of our soul rise.
त्रेता के बाद दो कलाएं कम हो जाती हैं.
We had two celestial degrees after the silver age.
द्वैतवादी युग द्वापर आता है.
Then the copper age, that is the age of duality comes.
फिर कलयुग आ जाता है.
Then comes the iron age.
ज्ञान का वर्षा पूरा हुआ, भक्ति आ जाती है.
भक्ति starts when the inheritance of knowledge gets exhausted.
कहेंगे रावण का वर्षा.
It will be called the inheritance of Ravan.
रावण का वर्षा है भक्ति.
The inheritance of Ravan is bhakti.
भगवान का वर्षा है ज्ञान.
And the inheritance of God is knowledge.
नहीं तो भगवान आकर क्या देते हैं.
Otherwise, what else does God come and give you?
मेहलमानियां अटारियां धन संपत्ति देते हैं क्या.
Does he give palaces, multi-storied buildings, wealth and property?
ज्ञान ही देते हैं. और रावण क्या देते हैं?
He gives knowledge itself. And what does Ravan give?
है? भक्ति देते हैं.
He gives bhakti.
भागते रहो, ठोकरें खाते रहो, बुद्धि को ठिकाना मिलता ही नहीं.
Keep on running, keep suffering blows. The intellect doesn't find a destination at all.
So कहा जाता है मनुष्य मत.
These are called the directions of human beings.
और मनुष्य तो ढेर के ढेर हैं.
And there are innumerable human beings.
कितने गुरु हैं जो शिवो हम कह के बैठ जाते हैं.
There are quite a lot of gurus who sit and say शिवो हम.
हम ब्रह्मास्मि. मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही शिव हूँ.
अहम ब्रह्मास्मि. आई माई सेल्फ एम ब्रह्मा. आई माई सेल्फ एम शिव.
आसुरी मत कहेंगे क्योंकि पांच विकार सर्वव्यापी हो जाते हैं.
इट विल बी सेड डेमोनिक डायरेक्शंस बिकॉज द फाइव वाइसेस बिकम ओमनी प्रेजेंट.
ईश्वर को सर्वव्यापी कहना तो भूल है.
Saying God is omnipresent is definitely a mistake.
ईश्वर कहा ही उसे जाता है जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ शासक है.
The one who is the most elevated ruler in the world, he himself is called God, Ishwar.
ये गुरु लोग अपने को ईश्वर कहलाते हैं।
These gurus call themselves Ishwar.
पांच विकार तो सब में है।
Five vices are definitely present in everyone.
तो जब सारी दुनिया में विकार व्यापक हो जाते हैं तब ईश्वरीय मत मिलती है देवता बनने के लिए
सो व्हेन वाइसेस बिकम ओमनीप्रेजेंट इन द एंटायर वर्ल्ड इट इज देन दैट वी रिसीव द डायरेक्शंस ऑफ गॉड टू बिकम डीटीज
देवताएं पावन होते हैं
डीटीज आर प्योर
बाप आकर पतितों को पावन देवता बनाते हैं
द फादर कम्स एंड मेक्स द इम्प्योर इनटू प्योर डीटीज
उनकी ईश्वरीय मत सबसे ऊंचे मत है
हिज गॉडली डायरेक्शंस आर द मोस्ट एलिवेटेड डायरेक्शंस
उसको श्रीमत कहा जाता है
इट इज कॉल्ड श्रीमत
जिस श्रीमत से तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनते हो
द डायरेक्शंस थ्रू विच यू बिकम द मोस्ट एलिवेटेड डीटीज
बाप ने समझाया है
द फादर हैज एक्सप्लेन्ड
जब कलयुग होता है रावण राज्य शुरू होता है
When the Iron Age begins and the kingdom of Ravan starts,
तब है आसुरी मत और भारत की ही बात है
There are the demonic directions and it is about Bharat himself.
जो भारत ऊंच से ऊंच था वो नीच से नीच बनता है
Bharat, who was the highest of the high, he himself degrades the most.
कि 84 जन्म भी भारत ही लेती है
भारत हर सेल्फ हैज 84 बर्थ्स
लेती है
शी हैज
है लेती है कि लेता है
डज शी हैव और डज ही हैव
लेती है नहीं भारत माता नहीं कहा जाता है
स्टूडेंट कमेंट्स इजंट इट शी हैज इजंट भारत कॉल्ड मदर
फिर
देन
जब माता है तो 84 जन्म लेती है या लेता है
When she is the mother, does she have 84 births or does he have 84 births?
जैसे माया रावण कहते हैं तो स्त्री है या पुरुष है या दोनों है
Just as it is said, Maya Ravan. So is it a woman, a man or both?
Maximum है 84 जन्म
Student, both. A soul can have maximum 84 births.
Minimum है एक जन्म
And minimum one birth.
बाकी 84 लाख जन्म नहीं है
As for the rest, no one has 84 lakh births.
84 लाख योनियां तो है
There are 84 lakh species.
लेकिन 84 लाख योनियों में मनुष्यों का जन्म नहीं होता है
But human beings aren't born as the 84 lakh species.
Satyuga hai, Shesth Yuga.
The golden age is the elevated age.
So, wahan thodi yoniya hoti hai.
So, there are a few species there.
Kaliyuga hai, Bhrashtate Bhrasht Yuga.
The Iron Age is the most degraded age.
तो वहाँ दुखदाई कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है
सो देयर द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स स्पाइडर्स मॉस्किटोस फ्लाइज द जर्म्स दैट स्प्रेड डिजीजेस कीप्स इंक्रीजिंग
तो 84 लाख योनियां सतयुग में कहें या कलयुग में कहें
सो विल इट बी सेड दैट 84 लाख स्पीशीज आर प्रेजेंट इन द गोल्डन एज और आर दे प्रेजेंट इन द आयरन एज
कलयुग में होती है 84 लाख योनियां
द 84 लाख स्पीशीज आर प्रेजेंट इन द आयरन एज
बाकी मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेता है
As for the rest, the human beings aren't born in 84 lakh species.
हाँ, ये कह सकते हैं.
Yes, it can be said.
कि मनुष्य जानवरों से भी बदतर कर्म करने लग पड़ते हैं.
That the human beings start performing actions worse than animals.
सूरत मनुष्यों की होती है और सीरत जानवर मिसल बन जाती है.
They have the face of human beings, but their character becomes like that of animals.
कीड़े मकोड़ों मिसल बन जाते हैं.
They become like insects and spiders.
बाकी 84 लाख जन्म नहीं लेते हैं.
But they don't have 84 lakh births.
ये बातें बाप बैठ समझाते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर.
The father sits and explains these concepts to you in the Purushottam confluence age.
इस तरफ है कलयुग और उस तरफ है सतयुग.
There is the iron age on this side and the golden age on the other side.
इस कलयुग में बहुत मनुष्य हैं.
There are a lot of people in this iron age.
तो 84 लाख योनियों के अनुसार व्यवहार करने वाले मनुष्य होंगे या नहीं होंगे.
So will there be human beings who act like the 84 lakh species or not?
मनुष्यों की चलन जानवरों कीड़े मकोड़ों मिसल बन पड़ती है.
The conduct of the human beings becomes like that of animals, insects and spiders.
सतयुग में तो थोड़े देवी देवताएं होते हैं.
There are a few deities in the golden age.
इस तरफ है अथाह अनेक अनेक धर्म.
There are numerous religions, many religions on this side, that is the iron age.
तुमको त्रिमूर्ति का चित्र भी दिखाते हैं.
The picture of Trimurti is also shown to you.
बताते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना.
He tells you the establishment takes place through Brahma.
सिर्फ ब्रह्मा नहीं कहते हैं.
He doesn't say only Brahma.
क्या कहते हैं?
What does he say?
है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना.
The establishment takes place through Prajapita Brahma.
अगर ब्रह्मा कहे, सिर्फ ब्रह्मा कहे,
if it is said Brahma, if it is said only Brahma,
तो संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता बनते हैं क्या?
Will you become a complete deity from a complete Brahmin?
69 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा.
Brahma left his body in 1969.
कोई भी ब्राह्मण को संपूर्ण ब्राह्मण नहीं कहेंगे.
No Brahmin can be called a complete Brahmin at that time.
हाँ, ये कहेंगे कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई.
Yes, this can be said that the Brahmin religion was established through Brahma.
उसमें भी दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं. कौन कौन से?
There are two kinds of Brahmins among them too. Who are they?
Kukvanshavali, माने गोद से प्यार करने वाले.
One of them are Kukvanshavali, means the ones who love the lap.
जिन्होंने गोद का सुख लिया है.
Who have received physical love.
उन ब्राह्मणों को ब्रह्मा की गोद ही याद आती रहती है.
Those Brahmins remember only the lap, meaning body of Brahma.
वो है कुकवंशावली.
They are the Kukvanshavali.
ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी पर ध्यान नहीं देते हैं.
They don't pay attention to the vani that was narrated through the mouth of Brahma.
ईश्वरीय वाणी की कदर नहीं करते हैं.
They don't value the words of God.
ईश्वरीय वाणी को इतना नकार देते हैं कि 20 वर्ष की वाणी नेस्त नाबूद हो जाती है.
They neglect the words of God so much that the warnings of almost 20 years get destroyed.
नहीं तो ईश्वरीय वर्षंस को रखना चाहिए बड़े एहतियात से.
Whereas the versions of God should be kept with great care.
क्योंकि ईश्वर की वाणी ही सत्य है.
Because the vani of God itself is the truth.
उस सत्यवाणी से ही सत्युग की स्थापना होती है. दुनिया में सत्य का बोलबाला होता है.
The golden age is established and truth triumphs in front of the world so that true vani itself.
तो ब्रह्मा द्वारा कहेंगे सामान्य रूप से ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है.
So it will be said that the Brahmin religion is established in an ordinary manner through Brahma.
कोई नई दुनिया की स्थापना स्वर्ग की स्थापना नहीं हो जाती.
The new world or heaven isn't established.
इसलिए फिर कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना.
This is why it is said that the establishment takes place through Prajapita Brahma.
तुम ब्राह्मण कुख वंशावली नहीं हो.
You Brahmins aren't कुख वंशावली.
मुख वंशावली हो क्योंकि तुमने ईश्वर की वाणी को जो ब्रह्मा के मुख से ही नहीं निकलती प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से भी निकलती है उस वाणी को तुमने पहचाना है. तुम फॉलो करते हो.
यू आर मुख वंशावली बिकॉज यू हैव रिकग्नाइज द वाणी ऑफ गॉड विच इज नरेटेड जस्ट थ्रू ब्रह्मा बट ऑल्सो थ्रू द माउथ ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा. यू फॉलो इट.
इसलिए तुम मुख वंशावली हो.
सो यू आर मुख वंशावली.
तो पहले पहले है बाप फिर तुम ब्राह्मण.
फर्स्ट ऑफ ऑल इज द फादर एंड देन यू ब्राह्मण्स.
और तुम ब्राह्मण ही देवता बनते हो.
एंड यू ब्राह्मण्स अलोन बिकम डीटीज.
वे ब्राह्मण देवता नहीं बनते हैं.
दोज ब्राह्मण्स डोंट बिकम डीटीज.
क्या अंतर है.
व्हाट इज द डिफरेंस.
तुम ब्राह्मण देवता बनते हो वे नहीं बनते हैं.
Why do you Brahmins become deities and they don't?
तुम माने जो सन्मुख बैठकर बाप के सुनते हैं समझते हैं धारण करते हैं और सारी दुनिया को धारण कराते हैं.
You means those who sit in front of the father, who listen, understand and assimilate the knowledge and make the entire world assimilate it.
ये भी बच्चों को बाप ने समझाया है कि राम को तीर क्यों देते हैं.
The father has explained even this to the children as to why they show arrows in the hands of Ram.
इस समय तुम सब हो रूहानी क्षत्रिय.
Right now, all of you are spiritual warriors.
तुमको तीर मिले हुए हैं. पूर्व जन्म की प्रारब्ध से.
You have received the arrows of knowledge as the fruit of the actions performed in the previous births.
जैसे राम फेल हुआ राम के पीछे पीछे तुम बच्चे भी फेल हुए.
Just as Ram failed, you children also failed after him.
तो बाप से बच्चों को ऑटोमेटिक तीखे तीखे बाण मिले हुए हैं ज्ञान के बाण.
So the children have automatically received sharp arrows, the arrows of knowledge from the father.
बाप आकर के गुप्त रूप से तुमको बाण देते हैं.
The father comes and gives you arrows secretly.
गुप्त बाप आता है.
The secret father comes.
इन आँखों से बाप देखने में नहीं आता है.
He can't be seen through these eyes.
तो कोई को कहे कि चलो तुमको रूहानी बाप दिखलाए आए.
So that you tell someone, come, I will show you the spiritual father.
नहीं.
No.
कौन सी आंख से देखने में आता है?
Through which eye is he visible?
ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने में आता है.
He is visible through the third eye of knowledge.
आत्मा भी गुप्त है, परमात्मा भी गुप्त है.
The soul as well as the supreme soul, both are hidden.
और ये भी जानते हो कि समझ आत्मा में ही होती है.
And you also know that the soul itself understands.
अच्छे बुरे संस्कार आत्मा में होते हैं.
Good or bad संस्कार are present in the soul.
पतित भी आत्मा बनती है और पावन भी आत्मा बनती है.
The soul itself becomes impure as well as pure.
आत्मा पतित तो शरीर भी पतित बनता है.
If the soul becomes impure, the body also becomes impure.
अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में रिहर्सल चल रही है.
Even now, the rehearsal is going on in the world of Brahmins.
याद की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आत्म की स्थिति में नहीं रहते हैं, तो आत्मा पति तो बनती है या पावन बनती है?
If you don't practice to stay in his remembrance, if you don't stay in the soul conscious stage, does the soul become impure or pure?
पतित बनती है. और जब आत्मा पतित बनती है तो संस्कार भी पतित हो जाते हैं.
It becomes impure. And when the soul becomes impure, its संस्कार्स too become impure.
शरीर भी पतित हो जाता है.
Its body also becomes impure.
जो शरीर की असली ऊर्जा है, ऊर्जा.
The actual energy, ऊर्जा of the body, ऊर्जा.
क्या नाम दिया उसका?
What is it named?
ऊ माने ऊपर और जा माने जाने वाली.
ऊ means up and जा means the one who goes.
जो आत्मा को ऊपर की ओर ले जाती है.
It takes the soul to a high stage.
जब पतित बनते हैं तो वो ऊर्जा जमीन में मिलाए देते हैं, नाली में चली जाती है.
When you become impure, you waste that power, it drains away.
तो बोला आत्मा पतित तो शरीर भी पतित बन जाते हैं.
So it was said, when the soul becomes impure, the body also becomes impure.
आत्मा पावन तो शरीर भी पावन बनता है.
When the soul becomes pure, the body also becomes pure.
आत्मा में खाद है तो जेवर भी खाद का बनता है.
If there are impurities in the soul, then there will be impurities in the ornament as well.
ये बातें बाप ही बैठ बताते हैं.
Only the father sits and narrates these concepts.
दूसरा कोई इन बातों की गहराई को नहीं बता देगा.
No one else will narrate the depth of these concepts.
जो बताते हैं ऋषि मुनि सभी कहते थे कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं.
The people who do narrate knowledge, all the sages, the hermits and everyone else used to say, we don't know the creator and his creation.
ऋषि मुनि की तो बात छोड़ो, उनके तो मंदिर भी नहीं बनाए जाते, मूर्तियों की पूजा भी नहीं होती है.
Leave aside the sages and the hermits. Their temples aren't built. Their idols aren't worshipped either.
जिन लक्ष्मी नारायण के मंदिर भी बनाए जाते हैं, पूजा भी होती है, और दुनिया में और शास्त्रों में कहीं भी उनकी कोई ग्लानि नहीं है, वो लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते थे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को.
The Lakshmi Narayan whose temples are built, who are even worshipped, and there is no defamation about them in the world or in the scriptures, even those Lakshmi Narayan didn't know the beginning, middle and end of the creator and the creation.
तो वो ईश्वर का ज्ञान परंपरा नहीं चल सकता.
सो द नॉलेज ऑफ गॉड कांट बी पास्ड ऑन एज अ ट्रेडिशन.
ये आत्मा ही श्रेष्ठ और नीच बनती है.
दिस सोल इटसेल्फ बिकम्स एलिवेटेड एंड लोली.
सभी कुछ आत्मा ही बनती है.
द सोल इटसेल्फ बिकम्स एवरीथिंग.
आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है.
द सोल लीव्स वन बॉडी एंड टेक्स ऑन अनदर वन.
अभी आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है. शूटिंग होती है क्या? हो रही है.
Does the soul leave one body and take on another one right now? Does its shooting take place now? Is it going on?
नहीं, वहाँ तो 63 जन्म और सतयुग त्रेता के 21 जन्म शरीर छोड़ते हैं और लेते हैं.
Student replies, No, there in the 63 births and the 21 births of the golden and the silver age, You leave one body and take on another one.
यहाँ शूटिंग कैसे होती है?
How does its shooting take place here?
यहाँ भी शूटिंग हो रही है और ये शूटिंग का, रिहर्सल का, रिकॉर्डिंग का हिसाब बाप ही बैठ समझाते हैं.
Its shooting is going on here as well, and the father himself sits and explains the calculation of this shooting, rehearsal or recording.
दुनिया में न कोई गुरु न कोई ब्राह्मण समझा सकता है.
नो अदर गुरु और ब्राह्मण इन द वर्ल्ड कैन एक्सप्लेन इट.
कहते भी हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल. सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल.
दे इवन से द सोल्स एंड द सुप्रीम सोल वर सेपरेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. And there was a beautiful reunion when they found Sadguru as the mediator.
Dalal Sakar ko kaha jata hai.
The corporeal one is called the mediator.
Acha. Om Shanti.
Acha. Om Shanti.